से मुक्त होने की प्रक्रिया करता है, क्योंकि मैं अकेला तैयार हुआ हूं। जब मेरा किसी से राग था और वो दूर चला गया तो मैं अकेला हो गया। फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। ऐसा अकेलापन तो मुझे कई बार प्राप्त हुआ है कि मैंने जिस जिसको यहां पर अपने साथ रखा, जिस जिसको अपना साथी माना, पूरे जीवन भर का साथी जिसको माना, वो भी एक दिन जो है मुझे छोड़ करके चला गया। और फिर क्योंकि मैंने उसको अपना साथी माना था, जीवन भर साथ देगा ऐसा माना था, इसलिए उसके विलग होने पर मैं व्याकुल हुआ। और व्याकुलता आखिर अंततः मुझे और अधिक व्याकुलता में ले गई। व्याकुल का फल व्याकुलता है। ये मैं हमेशा अपने जब पूजा किया करता था, अब तो भगवान की दूसरे ढंग से पूजा करता हूं। पहले जो पूजा करता था तो इसी लग मेरे साथ कोई पूजा करने तैयार नहीं होता था, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं कि एक पंक्ति पे कहो आधे घंटे तक रुका रहा हूं, तो कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पूजा पूरी ही करनी है। आज मैं देखता हूं लोग एक पूजा करके दूसरी पूजा, दूसरी करके तीसरी, और चार, और दस पूजा कर ली, बाहर निकले कि मैं दस पूजा करूं। ठीक है, वो भी अच्छा, मैं नहीं करूंगी दस पूजा। लेकिन जब मैं अपने बड़ी बड़ी बहन को भेज करके वापस लौटता था तो तीन तीन दिन तक खाना नहीं खाया जाता था और मन नहीं लगता था, तब जाके पूजा के समय भगवान के सामने कहता था कि फिर जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आपकी व्याकुल वो लेता व्याकुल का फल। और व्याकुल होता रहता था और वहीं पर रो करके वापस लौट आता था। चार चार दफे इस लाइन को, ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगती थी कि जीवन में हम कितने सारे संबंध बनाते हैं, कितने सारे साथी बनाते हैं। जो दो कदम हमारे साथ चलता है सोचते हैं कि हमेशा चलेगा, लेकिन दो कदम चला है इतना ही बहुत है। उसका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। ट्रेन में बैठते हैं एक दिन तक के लिए, अगर एक दूसरे का साथ होता है तो ऐसे जुड़ जाते हैं कि अब तो शायद जिंदगी भर अलग नहीं होंगे। पर उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, हमारा स्टेशन आता है, हम उतर जाते हैं। अगर ये हम ध्यान रखें कि हम अलग हैं, दूसरे की एग्जिस्टेंस अलग है, वो मेरे साथ हो सकता है लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे सकता। किसी का किसी के साथ होना अलग है और किसी का किसी का साथ देना बिल्कुल अलग चीज है। एक मां, मैं हमेशा कहता हूं कि अपने बेटे की पीड़ा में रो रो करके बेहाल होकर के अपने प्राण देना चाहे तो दे दे, लेकिन बेटे की पीड़ा बांटना चाहे तो नहीं बांट सकते। ये एकत्व है, ये एकत्व का बोध है कि मेरी अपनी अप्रोच क्या है। किसी से हम शिकायत भी कैसे कर सकते कि साथ नहीं दिया, वो दे कैसे सकता है। बेटे से शिकायत की जा सकती है कि आखिरी समय दवा नहीं दी, पानी नहीं दिया, लेकिन ये शिकायत नहीं की जा सकती कि दो सांसें नहीं दी, क्योंकि सांसें दी नहीं जा सकती। कहां तक अप्रोच है, कहां तक कोई हम साथी यहां पर ढूंढ सकते हैं। हम कितने साथी ढूंढ करके और कितने साथियों को खो चुके हैं, अपने आप का साथ हम कभी नहीं पा पाए हैं। ये बोध अगर हमें ये विचार दे दे, विचार करें निरंतर कि कौन साथी है यहां पर। आप अकेला हो करे मरे अकेला हो, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा लग। हम तो मानते हैं कि यही मेरा साथी है, यही मेरा सगा है, लेकिन कितना सगा है ये भी तो जानना चाहिए। अपने सिवाय कोई किसी का सगा नहीं होता। अपने से जो पृथक है वो अपना सगा है, मैं अपना सगा हूं। इसके मायने ये ना कहना एकत्व भावना के कि सारा परिवार, समाज और राष्ट्र इस सबको मैं एक तरफ छोड़ करके और अपना करने निकल जाऊं, स्वार्थी हो जाऊं, ये एकत्व भावना का अर्थ नहीं है। एकत्व भावना इन सब के बीच भी मैं अपने सुख दुख का कर्ता भोक्ता स्वयं हूं इस बात का एहसास हो पाना, ये एकत्व भावना है। सबके बीच रह करके किसी से शिकायत नहीं करता है, किसी का आलंबन नहीं लेता है, बल्कि सबको आलंबन देने में लगा हुआ। जो एकत्व भावना से युक्त होगा वो सबको आलंबन तो देगा, सबका सहयोग करेगा, लेकिन किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं रखेगा। वो उतना ही अधिक परोपकारी होगा, वो तो लोगों को देता चला जाएगा कि जो है मैं देते चले जाऊं, आगे बढ़ते जाऊं, मुझे चाहिए किसी से कुछ नहीं है। एकत्व की भावना हमें एक तरफ समाज से, राष्ट्र से और परिवार से संबंधों को निर्मल भी करती है, दूसरी तरफ हमें अपने से जोड़ देती है। जो अपना खुद का साथ रखता है उसे किसी दूसरे के साथ की अपेक्षा नहीं होती, और फिर उसे अपेक्षा परिश्रमी होने से कोई शिकायत नहीं होती, समता आ जाती है। क्योंकि सारे सुख दुख अगर मैं गौर से देखूं तो संबंधों के हैं, चाहे वो व्यक्ति व्यक्ति से संबंध हो, चाहे वो वस्तु से संबंध हो, हमारी निजता को खो देने वाले सारे संबंध हैं। और इसी वजह से हमें सुख दुख की अनुभूति होती, जितने हम अपने आत्माश्रित होंगे, जितने हम स्वावलंबी होंगे, उतने अधिक हम शांत होंगे, उतने अधिक सुख दुख में समता रख पाएंगे, उतने हम संसार के बीच ठीक से जी पाएंगे। अनुपेक्षा, एकत्व अनुपेक्षा संसार से विमुख होने की प्रक्रिया नहीं है, संसार के बीच शांत भाव से जीने की प्रक्रिया देने वाली है ये एकत्व की भावना। मैं सोचता हूँ कि अगर इस एकत्व की भावना के द्वारा हम अपने लिए अल्टीमेटली जिम्मेदार मानकर एक पक्षी था, पूरा हो गया था और वो पेड़ पर ऐसे पेड़ पर रहता था जिस पेड़ पर कि कोई भी नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ कि ढेर सारे पक्षी आए उस पेड़ पर। बहुत खुश हुआ वो कि इतने सारे पक्षी आए हैं, कहीं से निकले होंगे और उस पेड़ का आलम्बन लेकर के उस पेड़ पर बैठ गए। वो बूढ़ा पक्षी बहुत खुश हुआ उतने सारे पक्षियों को, और सारी रात उनके साथ रहा और उसे ऐसा लगा कि अब तो ये पक्षी हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। लेकिन सुबह होते ही जब सारे पक्षी एक एक करके जाने लगे तो हर पक्षी के पास जाकर के उसने कहा कि क्या करते हो, सारी रात मेरे साथ रहे, मेरे से बिना पूछो कहां जाते हो। जिंदगी भर एक बेटा आपके साथ रहे और जिस दिन मौत आकर के उस बेटे की खड़ी हो जाए और उस दिन वो आपसे बिना पूछे जाने लगे तो आप अपना अधिकार नहीं बता सकते उस पर कि मिस्टर घर से बाहर तो तुम हमसे बिना पूछे नहीं हो, ये हमेशा तुम भी कहां जा रहे बिना पूछे, हमसे पूछ लिया बेटा, ऐसा कह सकते हो? कोई नहीं कह सकता। जाने वाला चला जाता है, आने वाला आता है, लेकिन हम किसी को रोक नहीं सकते। वो पक्षी दुखी होता रहा, एक एक पक्षी उड़ करके जाता था और वो दुख से भर जाता था कि रात मेरे साथ रहे और अब एकदम चले गए। इतना अधिक बेगानापन, ऐसी शिकायत वो कर बैठा। ऐसी शिकायत की तो हम यहां लेकर के जीते हैं, सब साथी खोजते रहते हैं, दुनिया भर को अपना साथी मानते रहते हैं, लेकिन जब एक एक करके सब बेदूर हो जाते हैं तब हम दुखी होते हैं। चाहे वे वस्तुएं हों, चाहे वे व्यक्ति हों, हम थोड़ा सा विचार करें कि कोई किसी का कितना साथ दे सकता है। अगर कोई मेरे साथ पैदा हुआ होता तो वो मेरे साथ मर सकता था, लेकिन ना कोई मेरे साथ पैदा हुआ। दो लोग एक साथ जिंदगी भर जिए तब भी एक साथ मर नहीं सकते हो, ना अकेले ना एक साथ पैदा होते हैं ना एक साथ मरते हैं। ये बात अलग है कि कोई एक्सेप्शन हो जाए कि दो बेटे तेईस पैदा होगा, लेकिन एक साथ कोई भी नहीं, एक पहले आया एक उसके बाद आया। टाइमिंग्स के चेंज है, चाहे 30 सेकंड्स का हो, चाहे 10 सेकंड्स का हो, एक मिनट का हो, पांच मिनट का हो, एक साथ ना कोई जन्म लेता है ना एक साथ कोई मर सकता है। इसके बारे में बहुत बाहर से नहीं लेना, बहुत व्यस्त में जाकर के कि मैं अकेला ही हूं और मुझे अपना जन्म मरण स्वयं करना पड़ता है, मेरे जन्मने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे मरने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे ही फर्क पड़ता है मेरे जन्मने और मरने से। अगर हम इस तरह का विचार करें तो हमारे जीवन में जरूर से शांति आएगी, विरक्ति आएगी। मैं तो जीवन में बहुत गौर से कई चीजें देखता हूं और आपको भी सलाह ये देता हूं कि बहुत गौर से देखने की प्रक्रिया सीखिएगा। मेरी हैबिट में था, मैंने शायद आपको बताया था एक बार कि चॉइस का गणित बहुत था कि कौन से पैंट के साथ कौन सी शर्ट, और अगर वो शर्ट नहीं है तो फिर वो वाला पैंट भी नहीं पहनेंगे और शायद उस दिन बाहर भी नहीं निकलेंगे जब तक कि उस पर प्रेस वैस होकर के और वो ठीक होकर के नहीं आ जाएगा। तो इस तरह का एक समय था कि इस तरह की प्रक्रिया थी। और एक दिन मेरे मन में, तीन दिन का मेरे जिम में प्रोग्राम आया, ऑर्गेनाइजेशन था कोई, उसमें ऑर्गेनाइज करना था, तो मैं बड़ा मन बना करके बैठा हुआ था कि इस दिन ये पहनूंगा, इस दिन ये पहनूंगा, इस दिन ये वाली, तीन दिन और तीन तीन सत्र में और अलग अलग ढंग से। पता नहीं क्या हुआ, पहले ही दिन राजेश जी का प्रवचन सुन रहा था और फिर मन में आया कि मैं इतना इन ड्रेसों को लेकर के परेशान हूं, इतना सारा टाइम इसमें लगा रहा हूं किस लिए, कि लोग देखेंगे। अच्छा, आज देखते हैं कि कौन टोकता है, अगर मैं वो ड्रेस पहन के जाऊंगा। फिर मैंने जिद ठान ली कि जो पहले सत्र में ड्रेस पहनी थी वही दूसरे में, और वही शाम को हुई, और फिर वही अगले दिन हुई, और तीनों दिन मैंने पहनी। किसी ने भी तो नहीं पूछा कि यार तुम कल भी नहीं बोले क्या? मैं सोचता था कि लोग कहेंगे कि यही पहनो अकेले, मैं सोचता था कि सब मेरे कपड़े ही देख रहे हैं। असल में हम किसी चीज को व्यस्त में जाकर के नहीं सोच पाते हैं, अपने संदर्भ में हम विचार नहीं करते, दूसरों के संदर्भ में विचार करते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के संदर्भ में विचार करता है, अपने संदर्भ में विचार नहीं करता, वो व्यक्ति कभी भी एकत्व उपेक्षा तो नहीं पा सकता। हम हमेशा दूसरे के संदर्भ में विचार करते हैं कि ये ऐसा है इसलिए मुझे ऐसा होना है, ये ऐसा है इसलिए मुझे ऐसा होना है। नहीं, अपने संदर्भ में हम विचार करें, क्योंकि अल्टीमेटली अपने जीवन के लिए हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है हमारे अपने जीवन के लिए। अगर हम ऐसा थोड़ा सा विचार करें तो अनुपेक्षा हमारे जीवन में आकर के हमें शांति देगी। मैं ऐसी भावना भाता हूं कि हम सब लोग जो है इस तरह निरंतर 12 दिन तक अगर कोई व्यक्ति इन अनुपेक्षाओं को इतना सीख ले और फिर उनका प्रयोग करे, तो मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ शांति जीवन में आएगी। मैं भावना भाता हूं कि हम सब लोग जो है वो भावना के द्वारा विरक्ति को प्राप्त हो। बड़े आचार्य गुरु विद्या सागर
महाराज। यहाँ पर अनुप्रेक्षा के विषय में हम सब विगत दिनों से सुन रहे थे। अभी अनित्य, असरण, संसार और एकत्व, इस तरह इन चार अनुपेक्षाओं का कथन हो चुका है। लेकिन यह जो अन्यत्व अनुपेक्षा आज यहाँ चलेगी, इसके विषय में थोड़ा सा समझ लें कि इनका परस्पर में क्या संबंध है, एक से दूसरे का और दूसरे से तीसरे का कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होता है। जैसे पहले दिन अनित्य अनुपेक्षा का कथन होगा था, वहां पर यह बताया गया था कि जिनमें हमारी, जिन पदार्थों में नित्यत्व की हमारी बुद्धि है वो मिथ्या है। उस नित्यत्व की बुद्धि को हटाने के लिए अनित्य अनुपेक्षा का कथन किया, ना कि वहां पदार्थों को अनित्य किया गया है कि पदार्थों को अगर अनित्य कर देंगे तो उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी, लेकिन उन पदार्थों का जो हम उपभोग करते हैं तो नित्य मान करके करते हैं, और उनकी अनित्यता क्या है कि वो हमेशा हमारे पास उस अवस्था में नहीं रहते, बदलते रहते हैं। आज हमारे पास में उसी रूप में है, दूसरे रूप में हो सकते, फिर वो दूसरे के पास जा सकते, इस दृष्टि से वो अनित्य है, ऐसा बताया गया था। तो जब अनित्य है, हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हमने उनकी सुरक्षा के लिए दूसरे साधन खोजे, शरण ली, तो हमने शरण में आए तो मालूम चला कि जिसके लिए हम शरण ले रहे हैं वास्तव में कोई शरण दे नहीं सकता। तो आश्रय अनुपेक्षा ने स्पष्ट कह दिया कि गलत पहने मत रहना, यहां किसी को कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। जिससे तुम सुरक्षित होना चाहते हो वो परिवर्तन तो नियम से होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो वहां पर तो हमारी शरण की बुद्धि थी वो भी टूट गई अशरण अनुपेक्षा से, और जहां हम शरण खोज रहे थे वो शरण कहां खोजी जा रही थी, ये उसने विचार नहीं किया, ये संसार में शरण खोजी जा रही थी। संसार में शरण खोजना तो पहले संसार के स्वरूप तो समझ लेते थे, संसार का स्वरूप क्या है उसके बाद शरण खोजते। तो इसलिए संसार अपेक्षा रख ली, संसार के स्वरूप को समझने के लिए कि तुम्हारी बुद्धि जो शरण की थी वो यहां देखो तो संसार का स्वरूप कि पूरा संसार दुखमय है, सारा संसार चतुर्गति रूप जो संसार दुखमय है, बिल्कुल भी सुख नहीं है, इसमें तुम शरण खोज रहे हो, सुरक्षा चाह रहे हो, तो यह संसार अपेक्षा से यही बुद्धि हमारी हट गई। लेकिन संसार में आए तो सोचा कि शरण नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा जो जो हमें मिल रहा है दुख भी मिलता तो कम से कम एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके बांट लेते, हमारे इसमें कोई सहयोगी बन जाते, सुरक्षा नहीं दे पाते कोई या सहयोगी बन जाते। तो एकत्व अपेक्षा ने ये स्पष्ट कर दिया कि तुम यहां जो सहयोगी ढूंढना चाहते हो तुम्हें यहां कोई भी सहयोगी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपने परिणामों से जो कुछ भी अर्जित किया है वो तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा, उसमें कोई भी उसका विभाजन करके उसका हिस्सा अपने में नहीं ले सकता है, चाहे दुख का हो या सांसारिक सुख का हो, वो स्वयं हमें मिलता है दूसरे को नहीं मिलता। जैसे चक्रवर्ती का चक्ररत्न और उसका जो विभूति का सुख है वो चक्रवर्ती को मिलता है, चक्रवर्ती के चले जाने के बाद उनके लड़कों के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे यहां पर समझ लेना चाहिए कि एकत्व भावना ये कह रही है कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हमें भोगना पड़ता है, यहां कोई किसी का साथी नहीं है। तो हम पिछले दिन ये समझ रहे थे कि यहां हम जो साथ ढूंढ रहे हैं और हम साथ मान करके बैठ रहे हैं ये हमारी मिथ्या धारणा है, इसको हमें तोड़ना चाहिए बार बार एकत्व अनुपेक्षा के माध्यम से कि ये सब स्वार्थ के हैं, थोड़े समय तक रहते हैं इसके बाद छोड़ करके चले जाते हैं, ये हमारे दुख का विभाजन नहीं कर सकते, ऐसा हमने एकत्व अनुपेक्षा में समझा। लेकिन अन्यत्र जो अनुपेक्षा यहां चलेगी इसका और एकत्व का भी संबंध है। एकत्व में हमने जो साथी माने थे तो ये भी हमारा एक भ्रम था, और ये भ्रम एकत्व अनुपेक्षा में बिल्कुल भी नहीं टूटा। वहां तो ये कह दिया कि तुम्हें भोगना है अपना, ये नहीं भोगेंगे, लेकिन हमने साथी की जो अपनी मान्यता कर ली थी कि हमारे साथी हैं, तो अन्यत्व अनुपेक्षा इसका स्पष्ट कर देता है कि ये तुम्हारे साथी नहीं है, तुम्हारा स्वरूप इन सबसे अलग है, पृथक है, इनका अलग है। इसलिए अन्यत्व अनुपेक्षा हमारे स्वरूप को पृथक कर देती है और जिनके साथ हम अपना संबंध स्थापित करते जा रहे थे उनको अलग करने की दृष्टि प्रदान करती है। हंस की तरह छील मील विवेक की दृष्टि प्रदान करने वाली यदि कोई वस्तु है तो उसका नाम है अन्यत्व अनुपेक्षा। ये हमारे लिए इस तरह का एक विवेक प्रदान कर देती है, जैसे कि हंस के पास एक विवेक होता है, उसके पास दूध और पानी मिला हुआ रखा हो तो दूध दूध पी लेता और पानी पानी छोड़ देता है। उसकी दृष्टि में मालूम है कौन सा ऐसा यंत्र लगा होता है उसके मुंह में कि दूध दूध ही ग्रहण करता है पानी छूट जाता है। मतलब इतना विवेक ये अन्य अनुपेक्षा हमें दे देती है कि तुम अलग हो और ये अलग है, ये तुम नहीं हो और मैं ये वो हूं, अलग दोनों अलग अलग है। इस तरह की विवेक की जो दृष्टि हमें प्राप्त होती है वो अन्यत्व अनुपेक्षा से हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात, इस अन्यत्व अनुपेक्षा से जो हमारे भीतर में एक बहरापन का आवरण चल रहा है जिसकी वजह से हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस बहरापन का भंडाफोड़ करने वाली यदि कोई है तो ये अन्यत्व अनुपेक्षा है। क्या करती है? मैं और मेरे का जो संबंध है इसका नाम ही बहरापन है। हम चैलाला में पढ़ते हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुक्ति में सबल दीन, जय रूप सुभग मूरत प्रवीण। इसमें क्या मैं और मेरे का जो संबंध है, बाहरात्मन की बात बता दी गई, कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, ये मैं वाली बात है, और मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरे परिवार है, मेरे बहन है, ये सब मेरे की है। मैं सबल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सब मैं और मेरे का जो मूल की एक परत हमारे भीतर में आ जाती है, इसी को तो बहरात्मपन कहते हैं। तो बहरात्मपन को तोड़ने के लिए यदि कोई है तो वो अन्यत्व अनुपेक्षा है, दोनों का अलग अलग स्वरूप प्रदर्शित कर देती है कि ये तुम नहीं हो और न ये हम हैं, तुम अलग हो और हम अलग हैं। इस तरह बहरात्मपन को तोड़ने वाली है जो मैं और मेरे की गुलामी थी, जिसकी जंजीर में हम जकड़े हुए थे, उस बंधन से हमें मुक्त कर देती है। संसार में प्राणी यदि वास्तव में दुखी है तो इन दोनों कारणों से दुखी है, मैं और मेरेपन से। जो हम नहीं है उसमें हम मैं डाल देते हैं कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और जब उसमें परिवर्तन होने लगता है तब फिर हमें तकलीफ होती है। जैसे कि मैं युवा हूं, अब युवा तो हमेशा नहीं रहता, नहीं, आज युवा है कल के दिन प्रौढ़ होंगे फिर वृद्ध हो जाएंगे, तो जब हम वृद्ध होते हैं तो फिर दुखदायी हो जाता है, वो हमारा युवा मानना हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो मतलब क्या होगा कि यहां मैं और मेरा हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। मेरे का कि आज मेरे पास ये पेन है, ये कापी है, ये वस्तु है, ये मेरी है, और उसके साथ मेरा अटैचमेंट जुड़ गया, और कल के दिन वो हमसे पृथक हो गई तो हमें दुखदायी बन जाती है। तो मैं और मेरा हमें दुख को जन्म देने वाला है, इसलिए मैं और मेरे के संबंध को, इस भ्रम को तोड़ने वाली यदि कोई है तो वो है अन्यत्व अनुप्रेक्षा। सबसे पृथक अपने आत्म स्वरूप की तरफ लक्ष्य कराने वाली अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। यह एक और बात है कि अप्रतिबद्धता की जमीन से प्रतिबुद्धता की सोपान पर पहुंचाने वाली यदि कोई है तो उसका नाम है अन्यत्व अनुपेक्षा। आदमी अप्रतिबुद्ध है। आचार्य कुंदकुंद महाराज ने अपने समय सार में इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, कम्मे नो कम्मम में अकम च कम्म नो कम्मम जायसा खल बुद्धि अपरिबद्धो हवादि तावा। कर्म और नौकर्म में मैं और मेरे का संबंध बन जाता है कि मैं कर्म हूं, कर्म मैं हूं या नौकर्म मैं हूं, इस तरह इनके संबंध में अपने रूप जो बुद्धि हो जाती है, यही तो यहां पर अप्रतिबुद्धता है, अज्ञानता है, यह हमारा बाहरात्मपन है। ऐसी इस अप्रतिबुद्धता को दूर करने के लिए या इस जमीन से हमें ऊपर तक पहुंचाने में यदि कोई है, इस विभाग को करने वाली है, तो अन्यत अनुपेक्षा जो हमें प्रतिबुद्ध कर देती है, हमें ज्ञानी बनाती है वास्तव में कि हम ज्ञानी हैं या नहीं। भेद विज्ञान को जन्म देने वाली यदि कोई है तो वो अन्यत अनुपेक्षा है। हम भेद विज्ञान की बहुत सारी चर्चा करते हैं और भेद विज्ञान के विषय में बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, और उन शास्त्रों के पढ़ लेने के बाद में जरूरी नहीं है कि भेद विज्ञान हो या नहीं। यदि अनुपेक्षा की जा रही है तो जरूर भेद विज्ञान होगा, क्योंकि अनुपेक्षा हमारे परिणामों की बात है। हम बार बार चिंतन करते तो हमारे परिणाम उस रूप हो जाते हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ये नहीं हूं, तो उससे हम पृथक हो जाते हैं। पृथककरण की जो बुद्धि हमें प्राप्त होती है उसका नाम ही तो यहां भेद विज्ञान है, कि शरीर और आत्मा के बीच में एक भेद की रेखा हमारी बुद्धि में खिंच जाए कि ये मैं नहीं हूं या ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। अन्यत्व अनुपेक्षा में मंगत राय जी ने अच्छी पंक्तियां लिखी है, यदि उन पंक्तियों का बार बार हम विचार करें तो विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता, वस्तु से कराई माने अपनी भीख नहीं। ये यहां पर हमारे ब्रह्म को बताया गया कि ये ब्रह्म कहां से पैदा होता है, तो कहते इसका जनक यदि कोई है तो वो मोह है, वो मिथ्यात्व है, जिसकी वजह से हमारे अंदर में ब्रह्म पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है, यह प्राणी इस ब्रह्म में पढ़ करके दुख में से भी सुख निकालने की कोशिश करता है, संसार के पदार्थों में से जहां सुख नहीं उनमें से सुख निकालने की बुद्धि करता है। उसे मृग की तरह कि जो प्यासा मृग और मरुस्थल में हो और दूर तक दृष्टि फैलाता है तो चमकती जो रेत है मरुस्थल की, वो ऐसा लगता है उसके लिए कि आगे पानी लहला रहा है। जो मरीचिका उसमें जो उसमें से उठती वाली है उसको ऐसा लगता है कि हाँ आगे पानी का सरोवर है और दौड़ता आगे चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां कुछ भी नहीं मिलता और अंत तो रहता उस मृग का उसी मरुस्थल में मरण हो जाता है, उसे पानी बिल्कुल नहीं मिलता, पानी का मात्र भ्रम होता है। तो यही बात यहां पर बताई गई कि मृग रूप मृग कृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन मित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। ये हमारा वास्तव में ये जो चेतन है ये मूल रूपी यहां पर इस मरीचिका में ऐसा भ्रम में पड़ गया है कि उसे ऐसा लगता है कि यहां मुझे सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा, और उसमें दौड़ता चला जाता है, लेकिन इस भेद विज्ञान को नहीं समझ पाता कि यहां सुख नहीं है। इस भेद विज्ञान को समझ ले तो यथार्थता मालूम चल जाए कि कहां सुख है और कहां दुख है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। वास्तव में सुख तो उसका नाम है जहां पर दुख बिल्कुल भी नहीं है। जिसके पीछे दुख लगा हुआ है वो सुख भी मात्र सुखाभास है, वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो उसका नाम है जो हमारे आत्मा सुख होता है, जो शाश्वत होता है, हमेशा बना रहता है, उसका नाम है वास्तव में सुख। जो हम यहां सुख को कहते हैं कि इस वस्तु को खा लेने से सुख मिला, इस पहन लेने से सुख मिला, इसको देख लेने से सुख मिला, इसके पीछे दुख जुड़ा होगा, ये मात्र सुखाभास है, सुख की मात्र आभास की अनुभूति है, ये सुख नहीं है। तो ऐसे इस भ्रम को तोड़ने के लिए कहा गया है कि तुम चेतन और देह अचेतन यह जड़ तुम ज्ञानी, निस्दिन करो उपाय देह का नहीं। भूल गए हम, मिले अनादि यतन तिछड़े जय पय अरु कानी। ये हमारे शरीर आत्मा का संबंध कैसा है, कहते तू चेतन और देह अचेतन। ये स्वभाव बताया गया कि तू कौन है, तू चेतन लक्षण वाला है, और ये जो तेरे काम लगा हुआ ये कौन है, ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है, इसमें रस रूप गंध आदि इसकी गुणधर्म अलग है। तो तू चेतन और देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि, ये कब से है, आज से है, कल से है, परसों से है, वर्ष दो वर्ष दो चार वर्ष नहीं, कहते अनादि से मिले अनादि यतन के बिछड़े। कैसे बिछड़ता है, दोनों का प्रकरण कैसे होता है, यत्न पूर्वक होता है, जहां यत्न किया जाता है, जहां आचरण किया जाता है, जहां पुरुषार्थ किया जाता है, वहां पर शरीर आत्मा को अलग अलग किया जा सकता है, बिना यत्न के इसे अलग नहीं किया जा सकता। फिर मात्र श्रद्धांजलि काम चलने वाला नहीं है, यहां जैसे यत्न करना पड़ेगा। ये अनादि से मिला है तू जाने है और ये जड़ है, ये सब जाएगा, लेकिन इसके बाद में से यदि अलग करना है तो यत्न करना पड़ेगा। यत्न करने के बाद में ही ये हमारे लिए जो हमारा तत्व है वो अनुभव में आने लगता है। तो ये अन्यत्व अनुपेक्षा हमें यही तो करती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें बार 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 हम पूरा यत्न करना चाहिए, पूरे पुरुषार्थ के साथ के वेद विज्ञान जिस किसी भी तरह से हमें प्राप्त हो जाए ऐसा हमें करना चाहिए। लेकिन मैं ही नहीं हूं, ये मुझसे सब भिन्न है, ये मुझसे सब भिन्न है, इस तरह से कोई यदि हमने रट लगा ली तो फिर रट लगाने से जरूरी नहीं है कि अन्यत्व अपेक्षा हमारे भीतर कुछ दे जाएगी। ये मात्र रखना है तोता भी रख लेता है, वो कहते हैं कि यहां शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना बिखेरेगा और उसमें हमें नहीं फंसना है, लेकिन जब तोता आता है उस दाने के लोभ में वहां फंस जाता है, फंसने के बाद में भी ये कहता रहता है, तो ये क्या है उसकी, ये अज्ञानता है, ये नहीं समझता है, ये उसके मत रटना है, ये रटन लगा ली उसने कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं, मैं इससे अलग हूं, मैं इससे अलग हूं। अभी उसके लिए भाव भावना नहीं हुई, वास्तव में अनुभव नहीं कर रहा है कि मैं ये नहीं हूं, ऐसा अनुभव अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये मत रट है। गंगा के किनारे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, संत महंत फकीर बहुत मिलेंगे आपको। उसमें एक ऐसा बैठा था कि जो राम 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 रट रहा था, तो कबीर वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि ये क्या मूर्खता है, ये राम 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 रटने से क्या राम मिलता है क्या? लेकिन उसे समझाया तो समझ में भी नहीं आता। तो दूसरे दिन क्या होगा कि कबीर चार रोटियां ली उन्होंने और उसके सामने बिल्कुल बैठ गए, थोड़ी दूरी पर रोटी रखकर के सामने बोले कि रोटी 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 भूख लगी है, रोटी रोटी रोटी। तो उसे फकीर ने देखा, कहता है मूर्ख, अरे भूख लगी है तो रोटी रोटी क्यों चल रहा है, सामने रखे खा लो नुकसान हो जाएगी। तो कहते हैं मूर्ख, हमने तो आप राम राम रखने से राम का अनुभव नहीं होता है, राम का अनुभव करके देख। उसकी आंख खुल, राम का अनुभव किया जाता है, राम को रखने से राम नहीं मिलता है, रखने से पुण्य जरूर मिल जाए लेकिन राम नहीं मिलता। राम को पाने के लिए तो उसके अनुभव के लिए कुछ हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो यहां पर पुरुषार्थ की बात कही जा रही है कि मुझसे ये अलग है, मुझसे अलग है, मैं इनसे अलग हूं, ऐसे रखने से हमें संपेक्ष हमें कुछ भी नहीं देगी, बल्कि हमें जो हमसे अलग है, जो हमारे साथ लगा हुआ है, ये शरीर ही मुझसे अलग है तो इसके साथ हमें क्या व्यवहार करना, ये तो छोड़ दीजिए। जो सामने दिखाई देते हैं उसको भी हम अलग नहीं समझ पाते हैं, जैसे परिवार, पुत्र, पत्नी, मकान, दुकान, पैसा, ये सब क्या है, इनमें नहीं क्या नहीं, ये सब जानते हैं कि मैं नहीं हूं, क्यों ये देखते हैं, आप सामने देख रहे हैं कि मकान हम घर छोड़कर नहीं यहां आ गए, आप स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, मारुति भी लेके आएंगे तो यहां देख कर छोड़ आएंगे, यहां यदि मैं होता तो मेरी बात करती, तो सामने देख रहे तो मेरी नहीं है ना मैं हूं। तो ये तो सामने इतनी मोटी मोटी बुद्धि की चीजें हैं जिन्हें हम सामने देखते हुए भी ऐसा नहीं मान पाते कि मैं नहीं हूं। इनसे बुद्धि को हटाना और फिर जो सूक्ष्मता से जो दूध और पानी की तरह हमारे आत्म प्रवेश और शरीर की मिली जुली अवस्था है, इसके लिए वेद विज्ञान के माध्यम से अलग करके अनुभव करने की बात आचार्य कहते हैं कि ये शरीर जो है ये तू नहीं है। इस शरीर को ये ऐसा कह देना कि मुझसे अलग है ये बहुत सरल है, कह देना कि पड़ोसी की तरह बहुत सरल है, लेकिन शरीर को पड़ोसी की तरह अनुभव करना बहुत कठिन है। आचार्य अमृतचंद महाराज ने अपने कलश में कहा है कि जो भी भव्य प्राणी इस शरीर के लिए पड़ोसी की तरह मान करके छह महीने तक इसको पड़ोसी की तरह व्यवहार करे तो उसके भीतर सम्यक दर्शन अवश्य पैदा हो जाएगा, लेकिन हम पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं। एक तो महाराज जी ने कहा था कि हमें कांटा चुभ जाए तो कैसा लगता है, सुई चुभ जाए तो कैसा लगता है, पानी बरसता है, ठंड लगती है, कैसा लगता है हमें, जबकि शरीर माध्यम है उसके लिए कम हो रहा है, लेकिन अनुभूति हमें होती, क्या होती, क्या हम उससे जुड़े होते हैं। अभी वास्तव में वो हमें अपने एकत्व की अनुभूति नहीं हो रही है, एकत्व की अनुभूति के लिए हमें अन्यत्र अपेक्षा का सहारा लेना पड़ेगा कि वास्तव में अरे मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, मैं कुछ अलग ही हूं, ऐसा अपने प्रति अनुभव करना पड़ेगा। शरीर के प्रति पड़ोसी की तरह व्यवहार करके अभी हम चलेंगे तो हमारे लिए कुछ हासिल हो सकता है। सब द्रव्यों से जो हमारा आत्मद्रव्य है वो बिल्कुल अलग है, पृथक है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मरने के बाद शरीर हमें रह जाता है, जो उसमें रहने वाला वो चला जाता है, लोग जाते हैं उसे जला देते हैं, समाप्त हो जाता है, लेकिन हम उस वेद विज्ञान को नहीं समझ पाते, अपने भीतर नहीं उतार पाते कि हमारे साथ भी तो ही लगा होता है, जो छोड़ के चला गया है यदि उसका होता तो साथ में आता, उसका नहीं है इसलिए छूट गया, लेकिन हम उसको अपना मान ही रहते हैं कि मैं ही हूं। गाय का बछड़ा होता है और बहुत सारी 150 गाय हो तो गाय की शक्लें एक जैसी लगने लगती कई बार, या भेड़ बकरी होगी एक जैसी शक्ल दिखती है, लेकिन उसमें तो उसका जो बछड़ा होता है उसे छोड़ दो तो किसके पास जाता है? जो उसकी माँ है उसके पास ही जाता है, पहचान लेता है मेरी माँ इन सब में ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है, उसके पास ही जाकर के पहुंच जाता है। तो बछड़े के पास जब इतनी बुद्धि है अपने माँ को पहचानने की, तो हमारे पास इतनी बुद्धि क्यों नहीं कि मैं कौन हूं, ये सारे ग्रह मेरे हो गए इन सबके बीच में मैं कौन हूं, हमें अपने को ही तो पहचानना पड़ेगा। तो अपने पहचानने के लिए अनेक अनपेक्षा यहां पर बताई गई है। कम से कम पहले हमें स्थूल रूप से बाहरी स्तर पर जो हम नहीं है सामने दिखाई दे रहा है ये अलग है, पहले उसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो मैं हमारा आत्मा और ये शरीर का संबंध है जो कि पृथक दिखाई नहीं देता है, फिर इसके प्रति जो हमारा भ्रम है इसको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं तोड़ पाते। मोटर भ्रम नहीं तोड़ पाता, सूक्ष्म की बात तो बहुत आगे की और हम सम्यक दर्शन की चर्चाएं करते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, लेकिन अभी पूछो उनकी दुकान मकान धानों परिवार वालों की बहुत चिंता रहती है उन्हें और उसके प्रति इतना लगाव रहता है। कहते जरूरी भी हम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, हमारी आत्मा तो शुद्ध स्वरूप ही है, बहुत कहा जाता है। कहने पड़े आचार्य ने लिखा है कि ये में साफ दो आधा अनार बंसर लक्षणों सीता में बाहरे भावा सभ्य संयोग लक्षण, ये कहना बहुत सरल लोग आचार्य ने जिस अनुभूति के साथ लिखा गया है वो अनुभूति जब हमें होने लगे कि ये में साफ दो आधा मैं एक साफ सत आत्मा हूं, वो जितने भी परिणाम क्रोध मान माया लोग आदि के युग रहे हैं ये मेरे नहीं है, मुझसे पृथक है, वो भी अनुभव जब होने लगता है ये अन्य पंपेक्षा की बहुत बड़ी देन है, लेकिन हम ये नहीं कर पाते हैं। कम से कम जो हमारे शांति को लूटने वाले हैं, हमारे शांति में भंग डालने वाले हैं, ऐसे मोटे स्तर पर जिनके साथ हमारा संबंध हो जाता है या एक अनुपेक्षा में जिनको अपने साथी समझा था उन साथियों को छोड़ने की बात कही गई, तो वास्तव में भी हमारी शांति को लूटने वाले हैं। लेकिन हम उन ठगों की ठगी को नहीं समझ पाते हैं। ठग कह रहे तो बड़ा बड़ा लगता है कि हमारे भैया को ठग कह रहे हैं, हमारे पिताजी और चाचा को ठग कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन देख लो ये हमारे इस जीवन की यात्रा में कितनी बार हमें मिले, कई कई बार पिता माता भाई बहन पत्नी पुत्र सब मिलते हैं, किस बार में नहीं मिलते, प्रत्येक जन्म में मिलते हैं, बार बार हमारी यात्रा में आते हैं, करते क्या है हमारी शांति को लूटने का काम करते हैं। ये हमें भ्रम देते हैं, लोग देते क्यों कहते हैं हम तुम्हारे हैं, कहते ना बेटा हम तुम्हारे यहां चिंता मत करना, हम बहुत सब कुछ तुम्हारा सहयोग करेंगे, तो ये भ्रम देते हैं लोग देते हैं हम तुम्हारे हैं, ऐसे हमें जीवन में कई कई बार आकर के लोग देते हैं हमारी शांति को भंग कर देते हैं इस तरह, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पाते कि ये वही है जो पहले हमें मिले तो इनने परेशान किया था, ये वही है, इनकी ठगों की ठगी जो है हम नहीं समझ पाते, हमें समझना पड़ेगा ये ठग है, हमें ठग लेते हैं लोग हमारी शांति को लूट ले जाते हैं, इसलिए उनसे हमें बचने की बुद्धि तो कम से कम एक बात पैदा करना है कि ये मेरे नहीं है, इनसे अलग है। ये आंख जब तक नहीं खुलेगी सत्य की आंख तब तक कुछ भी अनुभव नहीं आएगा, हमें अपने आत्मस्वरूप को समझने के लिए हमें पहले सत्य की आंख खोलना पड़ेगी। आज हम सब स्वप्न में चल रहे हैं, लेकिन हमारा स्वप्न इतना गहरा है कि हम उसको अपना मान बैठे हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे ही हैं। आपका समय हो रहा, अंत में एक छोटी सी घटना सुना करके मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं कि राजा जनक जिनके पास बहुत सारा वैभव था, कोई कमी नहीं थी, एक दिन वो सो रहे थे, गहरी निद्रा में थे और स्वप्न आया उन्हें, और स्वप्न में वो क्या देखते हैं, एक पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी है और पूरे बलबल के साथ में आ रहा है और शहर के भीतर आ रहा है, सारी सेनाएं छिन्न भिन्न कर गई है और सारे लोग यहां वहां भाग रहे हैं, कहीं कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो उसी समय उनके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने कहा कि राजन यहां से छोड़कर के भाग जाना भी अच्छा है। तो जनक उसी वक्त गुप्त मार्ग से बाहर निकले और नगर छोड़कर के जंगलों जंगलों कहते हैं 3 दिन और रात तक जंगल में चलते रहे, पहाड़ी पार करते रहे, नदी पार करते रहे, 3 दिन और रात चलते 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 न खाने को मिला न पीने को मिला। 3 दिन चलने के बाद में कहीं जाकर के एक गांव दिखाई दिया, वहां पहुंचे। भूख बहुत लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, तो देखा कि यहां कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो वहां जाकर के खोज की तो एक जगह भोजन बांटा जाता था, सदा वक्त था। तो वहां पहुंच गए कि यहां मिल जाएगा। तो वहां मांग की राजा और किसी के पास मांगे, बड़ी शर्माती, लेकिन क्या करे, भूखा क्या नहीं करता, सब कुछ करना पड़ता। तो आखिर राजा जनक ने हाथ फैला दिए, कुछ हो तो दे दो, बहुत भूखा हूं। तो जो वहां रसोईया था बनाने वाला बांटने वाला, उसने कहा कि बहुत देर कर आए, बच चुका है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब कल आना। तो जनक ने बड़ी दीनता करुणा के साथ कहा कि नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ हो थोड़ा सा तो दे दो। तो उसने कहा देखो थोड़ा। उसने बर्तन देखे तो उसमें जली या जली सी कुछ खिचड़ी लगी हुई थी। तो उसने अपने उससे निकाली चम्मच से और निकाल करके एक पत्ते के ऊपर रख करके और जनक के हाथ में रख दी। जैसे ही वो रखे कि एक चील ऊपर से आकर के और झपट करके ले गई। जैसे ही वो ले गई तो जनक चीत निकल गई, चीतकार निकली उनकी, लग गया हमें कुछ भी नहीं बचा। और जैसे ही चीतकार हुई तो उनकी नींद खुल गई। नींद खुली तो कहां ना जंगल था, ना भूख थी, ना वहां भीख मांग रहे थे, ना वो खिचड़ी थी, ना वो चील थी, कुछ भी तो नहीं था, वह पलंग पर पड़े थे। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया। और सुबह दरबार में जब पहुंचे तो अपने समाज सदस्य से कहा, पूछा कि बताओ ये सत्य है या वो सत्य है। तो यह सब प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा, कोई समझ में नहीं आता। सब चुपचाप कुछ समझ में आए तो उत्तर दिया, कहते ये सच है या वो सच है। तो उसमें एक समझदार मंत्री था, उसने कहा कि राजन न ये सच है और न वो सच है। कैसे, तो बताइए कि आपके साथ होगा क्या है। बोले मुझे स्वप्न में ऐसा ऐसा होगा था। तो बस राजन ये जो आप देख रहे हैं ये खुली आपका स्वप्न है, वो बंद आपका स्वप्न था। न वो सत्य है न ये सत्य है। जब आंख खुल गई तो स्वप्न की सारी विपत्तियां समाप्त हो गई और यहां जो विभूतियां हैं जिसमें आंख बंद हो जाएगी ये सुख सुविधाएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। तो न ये सत्य है न वो सत्य है, वास्तव में सत्य तो कोई दूसरा है। ऐसे वेद विज्ञान की दृष्टि हमें प्राप्त करनी है तो अन्यत्व अनपेक्षा हमें इस तरह भेद विज्ञान विवेक देती है जिससे हम अपने दुखों से बच जाते हैं और शांति का अनुभव करने लग जाते हैं। इसी भावना के साथ यहीं विराम लेता हूं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की
मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज बहुत बड़ा सम्राट, एक अत्यंत रूपवती और शीलवती नारी पर आसक्त हुआ। चूंकि वह नारी विवाहित थी इसलिए अनेक बार विवाह के प्रस्ताव भेजने के उपरांत ही उसने अस्वीकार कर दिया। धन का लोभ दिया गया, पटरानी बनाने की घोषणा भी की गई, लेकिन अपनी सील पर दृढ़ रहने वाली वह नारी किसी भी तरह की लौकिक विभूतियों के प्रलोभन में ना पड़ती हुई उस राजा के लिए कोई सीख शिक्षा देने के उद्देश्य से विरेचन आना शुरू किया और एक माटी के घड़े में अपने मल और मूत्र के लिए इकट्ठा कर लिया। बहुत सुंदर वस्त्र से उसको ढक रखा था और सम्राट को कहा कि मैं तुम्हारा प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हूं, अब आप आ सकते हैं। राजा बहुत सज धज करके अच्छे कीमती वस्त्र पहन करके उसके प्रासाद में पहुंचा तो सबसे पहले उस युवती ने कहा कि यह देह जिससे तुम्हारे लिए प्रीति उपजी है, जो सौंदर्य तुमने पहले देखा था, वह तुम्हारे लिए ढला हुआ महसूस हो रहा होगा। चेहरा मुरझाया हुआ था और तुम अगर ये रहस्य पूछना चाहते हो कि जो पहले तुमने सौंदर्य देखा था वो कहां गया, तो वह सौंदर्य उस घड़े के भीतर सुरक्षित है, तुम देख सकते हो। सम्राट ने जैसे ही वह सुंदर वस्त्र हटाया तो बदबू और दुर्गंध के अतिरिक्त कोई तीसरी चीज वहां पर नहीं थी। उसको विरक्ति का बोध हो गया और उसने फौरन सुई लेकर के दोनों आंखें फोड़ ली। क्या आंखों के न रहने पर वासना मिट सकती है? उस नारी ने कहा कि आंखें फोड़ लेने से कुछ नहीं होगा, मन की जो हजारों आंखें हुआ करती हैं उन आंखों से निरंतर विषयों का अधिग्रहण चलता रहता है। इस सौंदर्य जिसको तुमने शाश्वत मान करके प्रीति की थी उसका रहस्य भी उजागर हो चुका है। इस शरीर के भीतर दुर्गंध और मलिन पदार्थों के अतिरिक्त कोई तीसरी वस्तु नहीं है। आप लोग भी विगत दिनों से समझते आए हैं कि संसार में कोई शरण नहीं है, अकेला ही जीव आता है, अकेला ही कर्मबंध करता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है और एक दिन कर्मों से निष्क्रांत होकर के मुक्ति के लिए भी अकेला ही जाता है। जबकि बाह्य पदार्थों को अपने से भिन्न मानने की भी दृष्टि हमारे लिए उपलब्ध हुई, लेकिन जिस देह और आत्मा के प्रति वेद विज्ञान के भाव जागृत हुए थे उस देह का स्वरूप तो ये है, तूलित पोखे यह सुख है जो धोवे त्यों मैली, निस्दिन करो उपाय देह का रोग दशा फैली, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हार मास मस लहू रात की प्रकट व्याधि घेरी, काना पौड़ा पड़ा हाथ्य चूसे तो रोवे, फलो अनंत जु धर्म ध्यान की भूमि विषय भोगे, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होत अपावन निष्दिन मल जारी। इस शरीर को जितना पोषा गया, जितना श्रृंगारित किया गया, जितना इसके लिए दुलगाया गया, उतना ही ये शरीर सूखता चला गया। कोई ही सौंदर्य शाश्वत नहीं है। जिसके लिए हम अक्षुण्ण बनाने का प्रयत्न करते हैं वो भी वक्त के साथ साथ ढलता चला जाता है। बहुत कोशिश की जाती है कि बाल सफेद ना हो पाए, लेकिन आजकल तो जन्म से ही कुछ बच्चों के बाल सफेद हो जाते। मृत्यु संकेत करती है, पहली बार वह बाल सफेद कर देती है और ये संकेत देती है कि अब जीवन समाप्त होने को है, कुछ समय बचा है, लेकिन वह संकेत हमारे लिए कहां मिल पाता है। बाल सफेद हुए एक तो दिखते हैं, उससे पहले ही खिजाब लगा करके फिर से उनको काला कर दिया जाता है। वास्तविकता पर पर्दा डालने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या एक माह के उपरांत बाल फिर से उसमें सफेद अलग से नहीं दिखाई पड़ते हैं? वह कालापन जो हमारे मन के भीतर समा चुका है, बाहर की सफेदी दूर की जा सकती है, लेकिन अंदर का जो कालापन है, जो शरीर के प्रति अटैचमेंट है, जो हमने सौंदर्य को शाश्वत समझने की भूल कर ली है, वह निश्चित एक दिन मिथ्या के रूप में परिणत हो जाती है। ये शरीर रज और वीर का एक जोड़ मात्र है। इसमें रहने वाली जो शाश्वत आत्मा है, जो उस आत्म सौंदर्य को पहचान लेता है, वह शरीर की अशुचिता को समझ करके निरंतर उस देह से विरक्त होने की कोशिश करने लगता है। और वही विरक्ति देह ही वैराग्य के क्षण एक दिन उसके लिए मुक्ति मंजिल की ओर पहुंचा देते हैं। निस्दिन उस बात का प्रयत्न किया जाता है कि खूबसूरत दिखें, बहुत गोरे नारे दिखें, लेकिन कोयला को बार बार धोया जाए तब भी वह सफेद थोड़ी हो सकता है। जो वर्ण मिला है प्रकृति के नाम कर्म से, जो वर्ण उपलब्ध हुआ है, उसको भले ही कोई सी भी अच्छी अच्छी साबुन लगाई जाए, शैंपू से धोए जाए या बहुत अच्छी क्रीम पाउडर पोते जाए, लेकिन उससे सौंदर्य नहीं बदला जा सकता है। जो बहुत अधिक काले होते हैं और वो जब पाउडर लगा करके आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जामुन के ऊपर नमक रख दिया गया। लेकिन क्या उस कालिमा को धोया जा सकता है? स्याही की टिकिया है, उसके लिए अगर दूध से धोया जाए तो क्या होगा? दूध काला हो जाएगा लेकिन स्याही की टिकिया सफेद नहीं होने वाली। निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, जैसे उस शरीर को धोते हैं तीन तो मलिन होता चला जाता है। इसको धूप से बचाने का प्रयत्न किया, ये सौंदर्य समाप्त ना हो जाए, इसके बहुत सारे अवसर हमारे जीवन में आते हैं और बहुत विज्ञापनों के माध्यम से इस बात की कोशिश की जाती है कि कम से कम सौंदर्य अक्षुण्ण बना रहे, निरंतर अच्छा दिखने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ये शरीर से अपवित्र कोई दूसरी वस्तु इस जगत में नहीं देखी गई। ये देह सिर्फ इसलिए अपवित्र नहीं है कि इसमें नौ मल द्वार है, बल्कि ये मल का पिंड ही है। इसका निर्माण ही मल के द्वारा हुआ है, सप्त धातुओं से होता है, इसलिए इसमें कहां तक पवित्रता की आशा की जा सकती है। आचार्य स्वामी समंत भद्र देव ने लिखा है, स्वभाव तो सुचव काये रत्नत्र पवित्रते। स्वभाव से असुचि है शरीर, लेकिन रत्नत्र के माध्यम से इसमें पवित्रता आ जाती है। मानव शरीर में मुख्य रूप से तीन संकाय हैं। पहला मस्तिष्क है, दूसरा हृदय है और तीसरा हाथ पांव है। मस्तिष्क ज्ञान का केंद्र है, हृदय श्रद्धा का केंद्र है, सम्यक दर्शन का केंद्र है, और जो हाथ पांव है वो चरे वेति विश्वास रखते हैं, वो आचरण की ओर ले जाते हैं। इस देह में रत्नत्रय की कल्पना हो सकती है, रत्नत्रय को धारण किया जा सकता है, तभी ये पदार्थ सप्त धातुओं से युक्त शरीर की पूज्यवान हो जाता है। रत्नत्रय को उपासकों की आराधना की जाती है, इस देह की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि इसमें जो गुण विद्यमान है, जो रत्नत्रय धर्म विद्यमान है, उस रत्नत्रय के लिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रणाम करता है, विनय करता है। लेकिन इस देह के स्वरूप को कौन समझ पाता है? अगर उसमें चमड़ी न लगी हो तो ये कंकाल कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। जिस माता पिता के लिए अथवा जिस मित्र के लिए थोड़ी देर पहले आप बहुत स्वागत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही जब मृत्यु को वह प्राप्त हो जाता है तो आप कहते हैं कि इसको ले जाओ जल्दी, बदबू आने लगी। थोड़ी देर पहले तो उसी देह से प्रीति उपज रही थी, उसके लिए मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, लेकिन एक क्षण के बाद ही मृत्यु को उपलब्ध होते ही उसके शरीर में से बदबू आने लगी। ये शरीर अत्यंत दुर्गंधमय है। वैराग्य भावना में आप लोग पढ़ते हैं, सप्त कुघातु भली मर मूरत चर्म लपेटी सो है, अंतर देखत यासम जग में और अपावन को है। अपावन है ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या आस्था है इस बात पर, श्रद्धा है? क्या वाकई में हमने इस शरीर को अपावन माना है? अगर हमने इसको अपवन माना होता तब फिर पूजा की वे पंक्तियां भी साकार हो सकती थी जो आप नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अच्युत जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अगर भावात्मकता की ओर हमारी दृष्टि गई होती तो मंदिर जाने से पहले मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। या फिर एक छाटा जाता है कि कौन से रंग की बिंदी लगाए, कौन से रंग की चूड़ियां पहने, कौन से रंग की साड़ी पहने, क्योंकि मैचिंग का जमाना आ गया है। भले ही पूजा के समय हमारे लिए एक बात मालूम चल जाए कि जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घूम जाता, लेकिन ड्रेसिंग टेबल पर तो सब कुछ भूल जाते हैं। उस समय थोड़ी ख्याल रहता है कि ये महंगा जीवन घूम रहा है, एक घंटे मेकअप के लिए लगा दिए, लेकिन एक घंटे पूजा नहीं की होगी। अगर श्रृंगार करते वक्त बात याद आ जाए कि जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन खुल जाता है, स्नान करते समय वो बात आ जाए ख्याल कि कितने नदियों में नहाए, कितनी जगह के जल से नहाए, ऊपर शावर खुला हुआ है, पानी नीचे गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये पंक्तियां याद आनी चाहिए कि जो धोबे त्यो मेली, तूनक पोखे यह सूखे। जो जो इसका पोषण किया जाता है त्यों तो ये सूख तो चला जाता है, लेकिन हम अपनी दृष्टि शब्दों तक रखते हैं, हमारी क्रियाएं अलग होती हैं, हमारा चिंतन अलग होता है और हम सोचते कुछ अलग है। जब तक क्रिया और सोच में अंतर रहेगा और आचरण में अंतर रहेगा, तब तक हमारे लिए इन पंक्तियों का भावात्मक अभिक्रमण नहीं हो पाएगा। नवल द्वारों से आक्रांत शरीर भले ही ऊपर से धोया जा सके, साफ दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अंतर में जो घिनावनापन है, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी देह परस्ते होत अपावन निस्दिन मल जाए। इसके ऊपर सेंट लगाए गए, सुगंधित तेल इत्रों का प्रयोग किया गया, अच्छे वस्त्र धारण किए गए, लेकिन सेंट की खुशबू के खुद के लिए आती है, दूसरों के लिए हमारे शरीर की बदबू न लग जाए इसके लिए सेंट लगा दिया जाता है। पशु होते हैं उनका मलमूत्र भी काम में आ जाता है, अनेक औषधियां बन जाती हैं, उसको आंगन में लीप भी देते हैं, लेकिन मनुष्य के मलमूत्र को तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। अगर पसीना आ जाए उसको गुलाब जल मत मान बैठना, उससे दुर्गंध भी निकलने वाली है। अगर थोड़ी सी कोई वायु छोड़ देता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सोचने लगता कि अब तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण गंदा हो गया। ये मनुष्य के शरीर का वो है धर्म है, लेकिन इस शरीर से जो व्यक्ति काना पोया पड़ा हाथ है, जो खराब गन्ना हुआ करता है, जिसको चूसने पर मुंह छुल जाता है, उसके लिए अगर कोई चूसता है तो रोने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं शेष रहता, क्योंकि उससे तो हानि ही होने वाली है। लेकिन वही गन्ना अगर किसी भूमि पर बो दिया जाता है तो वह मधुर फसल को प्रेरण करता है। ये शरीर अपवित्र है, लेकिन अगर इसको धर्म की भूमि पर बोया जाता है तो धर्म ध्यान की रत्नित रहेगी और आचरण की अनंत फसल इससे पैदा हो सकती है। लेकिन हम इस देह का उपयोग भोग पदार्थों में करते हैं, अपने आत्मिक जागृति के लिए नहीं करते हैं, इसको सजाते रहते हैं, कौन कौन सी साधनों से इसकी धुलाई की जाती है, लेकिन इसकी धुलाई से आत्मा पवित्र नहीं होने वाली है। जो अशुचिता इसके अंदर स्वभाव से ही समा गई है, इसके निर्माण में भी जो अपवित्र धातु मिक्स होकर के बनी हुई है, वो अशुचिता क्या कभी समाप्त हो सकती है? बाह्य उपकरणों से नहीं हो सकती है। जो ऐसा वेद विज्ञान कर लेता है, जो ये समझ लेता है कि ये शरीर अपवित्र है, इसमें रहने वाला आत्मा ही सौंदर्यवान है। आचार्य कुंभ कुंभ देव कहते हैं कि इस जगत में आत्म सौंदर्य के समान कोई सौंदर्य नहीं है, लेकिन हम उस आत्मा के सौंदर्य को भुला करके इस देह के सौंदर्य की पुष्टि में लग जाते हैं। भले ही हम ऊपर से सौंदर्यवान दिखें, लेकिन जो अंदर की कुरूपता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, उससे पहले ये प्लास्टिक सर्जरी कराने का उपाय सोच लेते हैं, कम से कम बूढ़ापन ना दिखे। लेकिन समय सबको बूढ़ा करते चला जा रहा है। जो फूल आज मुखरित हुआ है, सुगंधित दिखाई पड़ रहा है, शाम के वक्त उसको आप देखिए तो सूंघने की इच्छा नहीं होगी। फूल मालाएं अगर किसी के गले में डाल दी जाए एक बार, और आप किसी दूसरे का स्वागत उसी फूल माला से करना चाहें, तो वो अपमान समझेगा, क्योंकि एक बार इस माला देह से स्पर्शित होने के उपरांत कोई वस्तु सुगंधित नहीं रह पाती है, कोई इत्र सुगंधित नहीं रह पाता है। आप सुबह से शाम तक अगर वस्त्र नहीं बदलते हैं, तब उन वस्त्रों में से भी दुर्गंध फूटना शुरू हो जाती है। इस देह का स्वभाव भी कुछ ऐसा है कि अच्छी अच्छी वस्तुएं भी इसके स्पर्श मात्र से दुर्गंध को पैदा हो जाती है। एक साधु जी स्नान करके निकलते थे नदी से बाहर, और उन्होंने झाड़ू लगा रहे थे, जो मेहतरानी बोलते हैं जिसको, चंदालम बोलते हैं, तो उससे कहा कि अरे मुझे छू मत लेना, नहीं तो फिर से नहाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि महात्मन, अगर मेरे छूने से आपकी देह पवित्र हो सकती है, तो आपकी आत्मा तो जो क्रोध मान माया लोक रूपी चार चंदाल जो निरंतर आपकी आत्मा को अपवित्र करते रहते हैं, उसकी शुद्धि का आपने कोई उपाय सोचा है या नहीं सोचा है? लेकिन उसका उपाय हमारे पास नहीं है, है भी तो हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है, क्योंकि हमने मान लिया है कि देह अगर पवित्र हो जाएगी, अच्छे हम दिखने लगेंगे, तो हमारी पूरी समाज में सम्मान मिलने लगेगा, लोग बैठना उठना पसंद करने लगेंगे। लेकिन गोरी चमड़ी मात्र किसी के व्यक्तित्व को उजागर